हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 31। पूरे हृदय से मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो आध्यात्मिक ज्ञान सुनने वाले हैं उसको समझ सके और उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्व पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सूतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। श्लोक नंबर 13.30 में कल हमने बहुत अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि प्रकृत्यै व कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश्च, यानी जो भी कार्य इस संसार में स्थित होने के बाद जो भी हो रहे हैं वो किसके जरिए हो रहे हैं, प्रकृति के जरिए हो रहे हैं। और यह पश्यति तथा आत्मानो अकर्तारम्, यानी कि जो ये देखता है कि आत्मा अकर्ता है कुछ नहीं करता, स पश्यति वही वास्तव में देखता है। आपके कन्वर्सेशन से तो पता चल गया कि आपको कितना अच्छे तरीके से ये समझ में आया, लेकिन पता है हमें क्यों समझ में आया? ये बहुत हार्ड था, वरना समझने का कोई चांस नहीं था, लेकिन क्योंकि श्री प्रभुपाद ने इतने अच्छे तरीके से हमें तात्पर्य में बताया इसलिए हमें समझ में आ गया। लेकिन जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे तब श्री प्रभुपाद का तो तात्पर्य था नहीं, तो अर्जुन को भगवान ने इतना बता कि इस टॉपिक को वाइंड अप नहीं किया, इसी चीज को आगे बताया। मतलब आगे के 2-3 श्लोक में बस यही बात बताई है कि शरीर जो है उसके जरिए हो रहा है, प्रकृति के जरिए हो रहा है, और आत्मा इससे लिप्त नहीं होती है, भले वो इसके अंदर भी होती है फिर भी उनके कार्यों में उसको कोई रुचि नहीं होती है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। अब इसी चीज को हम आगे समझेंगे और भगवान हमें बताएंगे और श्री प्रभुपाद जी हमें और भी सरलता से बताएंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 31 यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद यते यतदा, यानी ब्रह्म संपद यते यते तदा। इसका मतलब होता है जब ऐसा होगा ना तो आपको ब्रह्म की संपदा, यानी कि ऐसा लगेगा कि आपने ब्रह्म भूत का आध्यात्मिक जो आत्म साक्षात्कार है ना उसको प्राप्त हो जाएगा। कब ऐसा होगा? तो भगवान कहते हैं यदा भूत पृथक, यदा मतलब जब, भूत कौन है, जीव जो भी है यहाँ पर, पृथक भावम पृथक पृथक रूपों में, जितने भी ये संसार में जीव हैं उनको अलग अलग रूपों में एकस्थम एक स्थान पर अनुपश्यति, यानी किसी अधिकारी के माध्यम से देखने का प्रयास करता है। अब ऐसे नहीं हम कोई ना कोई अधिकारी है उसके माध्यम से, जैसे गुरु शास्त्र या साधु के माध्यम से हमें अलग अलग जीव के अलग अलग प्रकृति के मतलब शरीरों में एक ही जीव आत्मा जब दिखती है, जब हम देखते हैं तत एव, तत मतलब उसके बाद, एव च निश्चित ही उसके बाद क्या होगा, विस्तार विस्तारम, यानी इस विस्तार को जब हम हमें ये सही तरह से समझ में आएगा कि प्रकृति के अंदर जीव किस तरह से है, जीव आत्मा प्रकृति में है लेकिन उसके अंदर रहकर भी सब प्रकृति कर रही होती है, जीव कुछ नहीं कर रही होती है, तो ये इस तरह से हमें जब अधिकारी के गुरु साधु और शास्त्र के जरिए जब हमें पता चलेगा फिर क्या होगा, तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद यते तदा, फिर हमें आत्म साक्षात्कार का बोध होगा, ब्रह्म की प्राप्ति होगी, यानी ब्रह्म बोध प्राप्त, ब्रह्म बोध मतलब अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा बताते हैं, यहाँ पर कहते हैं जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, यानी कि जब आपके अंदर इतना ज्ञान आ जाता है कि आप ये देख लेते हो कि सारे शरीरों को अलग अलग रूपों, यानी क्या लिखा हुआ है कि विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न रूपों को देखना बंद कर देता है। अब जितने भी संसार में हमें शरीर नजर आते हैं, भौतिक रूप नजर आते हैं ना उसके साथ, लेकिन क्यों, क्योंकि हम अभी तक हमें इतना ज्ञान नहीं होता है कि हम आत्मा को समझ सके, आत्मा के बारे में जान सके, लेकिन जब हमें किसी गुरु महाराज के माध्यम से या किसी ऑथेंटिक चीज से हमें पता चलता है, किसी अनुपश्यति किसी अधिकारी के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं तो फिर हम जानते हैं कि ये तो प्रकृति है, वास्तव में तो ये कौन है जो मेरे सामने खड़ा है, वो भी आत्मा है मैं भी आत्मा हूँ। तो आगे बताते हैं, और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए, फिर उसे ये ऐसा रियलाइज होता है कि जीव जो है रियलिटी में आत्मा जो है वो किस तरह से फैली हुई है, तभी उसे ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है, फिर ही उसको आध्यात्म आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन होता है। इस चीज को श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, यानी कि अभी देखो इस संसार में कितने सारे जीव हैं, कितने सारे, अब जो जो जिस जिस जैसे हम लोग कितना क्लियर समझ रहे हैं इस चीज को कि जिस जिसने जो जो इच्छा की उसके अंदर उस जीव को डाल दिया, जीव मतलब वो शरीर क्यों है, इच्छा के कारण। किसी ने अगर धन पाने की इच्छा की है तो फिर उसको नाग बना दिया कि हाँ जाओ आप है ना ऐसा करो खजानों में जाके बैठ जाओ, किसी ने खाने की इच्छा की तो उसको हाथी बना दिया कि भाई हाँ हाथी तो मनोटनों खाता है, तुमको अगर खाने का इतना शौक है तो मनुष्य बनने की जरूरत नहीं है तुम हाथी बन जाओ। तो इसी तरह से जो जो इच्छाएं हमारी होती है तो शास्त्र में बताया गया कि उसी तरह के आपको शरीर मिल जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण होते हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबंधित नहीं है, यानी कि आत्मा से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन आत्मा को उसमें डालना पड़ा क्योंकि वो बगैर आत्मा के तो वो कोई भी काम नहीं कर सकेंगे ना, और आत्मा उसके अंदर फंसी हुई है। क्यों फंसी हुई है इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पता, क्योंकि वो है ना क्योंकि प्रकृति के कारण, प्रकृति के गुणों के कारण इधर आना पड़ा उसको, और यहाँ पर आकर वो प्रकृति के साथ अपना संबंध सोचती है, ऐसा प्रकृति के साथ उसको संबंध याद आ जाता है और भगवान के साथ अपना संबंध विस्मरण कर जाती है, इसलिए फंस जाती है। लेकिन वो उसके साथ रहते हुए भी उसका कोई रिलेशन है नहीं, तो वह वास्तव में देखता है, यानी कि जब उसे ये पता चलता है, श्रवणपा कितना अच्छा बताते हैं कि विभिन्न शरीर क्यों है, इच्छाओं के कारण उत्पन्न और आत्मा से किसी तरह संबंधित नहीं है, जब उसे ये बात समझ में आ जाती है तब वो वास्तव में देखता है। यानी कि जब तक हमने ये बात समझी नहीं है कि आत्मा का शरीर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, आत्मा का सिर्फ रिलेशन किसके साथ है, क्योंकि वो अंश है भगवान का, तो भगवान के साथ खाली रिलेशन है और भौतिक प्रकृति के साथ उसका कोई रिलेशन, ताल्लुक, संबंध है ही नहीं, जब वह देखता है तभी वो रियलिटी में देखता है। देहात्म बुद्धि के कारण, अब ये देहात्म बुद्धि को समझते हो ना, क्या मतलब है इसका? देह मतलब ये शरीर, आत्म मतलब आत्म, बुद्धि मतलब ऐसी अक्ल, ठीक है? यानी कि जो जिस बुद्धि से हम देह को ही आत्मा समझने लगते हैं, इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। यानी कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये शरीर ही मैं हूं, मैं ये शरीर हूं, ये होता है देहात्म बुद्धि, यानी कि शरीर में ही आत्मा की बुद्धि के, बस मैं जो भी हूं वो शरीर ही है। तो हम देखो 99% लोग तो यही सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, आत्मा का जिसको खबर होती है ना वो भी सोचते नहीं है, उस चीज को रियलाइज करने की कभी कोशिश नहीं करते, वो सोच जब भी मरते हैं ना तब सोचते हैं, जब मर जाता है ना बंदा बोलते हैं हाँ बेचारा चला गया, तब याद आता है कि ये शरीर अलग था और आत्मा अलग थी। लेकिन जब तक जी रहा होता है तब तक उसको वही शारीरिक धर्म ही सिखाएंगे, ये नहीं बताएंगे कि बेटा तुम आत्मा हो, तुम्हें आत्मा के कार्य करने चाहिए, तुम्हारा संबंध खाली कृष्ण के साथ है, उस रिलेशन को आप समझो और उसी के हिसाब से आप, क्योंकि जीव आत्मा भगवान का अंश है तो आपको भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब तक जिंदा होगा ना तब तक ये बात कभी अपने दिल में आने ही नहीं देगा, क्योंकि उसकी बुद्धि कैसी होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है देहात्म बुद्धि के कारण। देहात्म बुद्धि के कारण क्या करते हैं हम, किसी को देवता, किसी को मनुष्य, किसी को कुत्ता बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। क्यों? जैसा शरीर होता है वैसा हम उसको देखते हैं, याद नहीं रहता कि ये वो, ये तो उसको कर्मों के अनुसार प्रकृति ने दिया, वास्तव में ये कौन है? आत्मा। यह भौतिक दृष्टि है। भौतिक दृष्टि क्या है कि आप किसी को भौतिक प्रकृति के रूप को देखो, उसके आत्मा को नहीं देखो, वास्तविक दृष्टि नहीं है। फिर वास्तविक दृष्टि क्या है? ये कि आप ये देखो कि सारे जीव जो हैं वो आत्मा हैं और भगवान का अंश हैं और इन सबको भगवान की सेवा करनी चाहिए। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। और ये भेदभाव क्यों है? क्योंकि देहात्म बुद्धि है, हमने देह में ही आत्मा की बुद्धि, यानी अपने आप को शरीर मान लिया है, इसलिए सबको शरीर मानते हैं। तो ये सब भेदभाव इसलिए है क्योंकि हमारी बुद्धि देहात्म बुद्धि है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। ये बहुत श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो जब शरीर नाश हो जाता है तब भी आत्मा वही रहता है, ऐसे का ऐसा। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। अब शरीर तो विनाश हो गया, आत्मा एक ही रहता है। अब उस आत्मा को भौतिक प्रकृति के संपर्क के, क्योंकि उसने अपना जो ये बंधन था, अपना संबंध था, अपना रिलेशन जो था वो किसके साथ था? वास्तव में जीवात्मा का, परमात्मा के साथ है ना, लेकिन उसको विस्मरण कर दिया और भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गया, उसमें आकर उससे लिप्त होना चाहा, तो इसकी वजह से उसको विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। ये बात अगर किसी को समझ में आ जाए कि मैं तो भगवान का अंश हूँ, मेरा कार्य केवल भगवान की सेवा करनी है, ये भौतिक प्रकृति का ये शरीर जो मुझे यहाँ पर मिला हुआ है इतना गंदा, इतना कचरे वाला, इसके अंदर कोई गुण नहीं है, मैं सारा दिन उसके पीछे क्यों पड़ा रहता हूँ, कैसे इसको खिलाऊं, कैसे इसको अच्छा बनाऊं, कैसे इसके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिले, तो ये सारा दिन मुझे कितना परेशान कर रहा है ये शरीर, क्योंकि वो मुझे मेरे वास्तविक कार्य को करने नहीं दे रहा है, मैं मुझे मेरे आनंद जो मेरा वास्तविक आनंद है कृष्ण चरणों की सेवा उसमें मुझे नहीं लगने दे रहा बल्कि इंद्रिय तृप्ति में फंसा रहा है। जब इस तरह का हृदय में भाव आता है ना तो कहते हैं तब उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ हो जाता है। फिर क्या होगा, फिर उसे कहीं पर भी ऐसे आगे भी बताएंगे। हाँ, इसको भगवान श्री कृष्ण 5.18 में बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं। अगर पॉसिबल हो तो पांचवें अध्याय का श्लोक नंबर 18 देखिए, भगवान क्या कहते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने यानी कि जो विद्या है जिसके अंदर ज्ञान है उससे संपन्न है ज्ञान, और कौन सा विनय नम्रता जिसके अंदर है, ये दो चीजें जिसके अंदर है युक्त ब्राह्मण, इन दो चीजों से जब संपन्न है युक्त है तो वो ब्राह्मण ही ब्राह्मण ने गवि मतलब गाय के अंदर, हस्तिनी मतलब हाथी के अंदर, शुनी कहते कुत्ते में च एव और श्वपाके कहते हैं कुत्ता बक्षी जो चंडाल होते हैं ना उसके अंदर सबके अंदर क्या देखता है, शुनी चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वो पंडित है वो ज्ञानी है जो समदर्शिनी सबके अंदर समान दृष्टि से देखने वाला होता है, यानी विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय तथा कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है, यानी कि वो इतना उसका अंदर ज्ञान इतना अच्छा होता है कि विद्वान हो बहुत ज्यादा, अगर विद्वान ब्राह्मण हो या विनीत ब्राह्मण हो, और अगर गाय हो कुत्ता हो जो भी हो उसको एक समान देखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर देहात्म बुद्धि नहीं होती। हमारी बुद्धि कैसी है कि हम अपने आप को यह शरीर समझते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो श्री प्रभुपाद ने क्या कहा है, देखो लास्ट वाली लाइन जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि इस प्रकार जो मनुष्य पशु ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है। जब उस ये सब भेदभाव हट जाता है और अपने आध्यात्म बोध उसको प्राप्त होता है, ये देहात्म बुद्धि खत्म हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो जाता है, तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया जाएगा। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अगला भी पढ़ लो, उसमें सही तरह से और भी पता चलेगा आपको। तो इसलिए हम लोग 13.32 भी पढ़ लेते हैं। भगवान कह रहे हैं अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वान् यानी नित्यता के कारण, क्या है वो नित्य कौन है, जो आत्मा है ना वो एकदम नित्य है अनादि है। ऐसे भगवान ने पहले ही बताया विद्या अनादि कि आपको प्रकृति और पुरुष को बिल्कुल अनादि समझना है, तो अनादित्वान् निर्गुणात्वान् यानी वो उसके अंदर गुण नहीं है, कौन से ये जो सत्वगुण रजोगुण तम, वो निर्गुण है दिव्य है। दिव्य चीजों में ये जो प्रकृति के जो ये भौतिक चीज है ना वो ये गुण सिर्फ उसी पर हावी होते हैं आत्मा पर नहीं होते। आगे बोला अनादित्वान् निर्गुणात्वान् परम, परम का मतलब होता है भौतिक प्रकृति से परे। अब देखो ये आ गई है इसके अंदर लेकिन उसकी क्वालिटीज कितनी चेंज है, ये निर्गुण है ये भौतिक प्रकृति से परे है और आगे बताया परमात्मा, अभी वो आत्मा है और अयम मतलब ये अव्यय अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होगा। भौतिक चीजों का नाश हो जाता है बट आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आगे कहा शरीरस्थोपि कौन्तेय, शरीर में वास करने वाला कौन्तेय, यद्यपि एक कौन्तेय जो शरीर के अंदर वास कर रहा, देखो शरीर की बात नहीं हो रहा ना, शरीरस्थोपि अस्तो मतलब इसके अंदर जो स्थित है कौन्तेय ना करोती ना लिप्यते, वो बेचारा एकदम अलग है, ना करोती सादा सा चुप करके अंदर बैठा हुआ है, ना करोती कुछ भी नहीं करता है, ना लिप्यते किसी के साथ उसका कोई संबंध भी नहीं है, खाली पस गया है, उसको निकालो, उसकी थोड़ी चिंता करो। बेचारा बैठा हुआ अंदर, उसका एक ही लक्ष्य है, उसका एक ही काम है अपने कृष्ण के श्री चरणों की सेवा करना। उसका और कोई लक्ष्य संसार में पिज्जा बर्गर खाने के लिए थोड़े आया है वो, इस संसार में कोई अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनने के लिए, जिस जिस चीज में हम लोग ने मन लगाया हुआ है, ये इंद्रिय तृप्ति, सेक्स की ख्वाहिशें, ये काम वासना को पूरा करना, इसका ये नखरोती न लिप्यते, ये जो वास्तव में आपकी जो स्थिति है वो आत्मा है, और ये जो चीजें आप समझते हैं हम लोग के हमें ये संतुष्टि प्रदान करेंगी, वो तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति है। इससे बाहर, इसके जाल से बाहर निकलने के लिए भगवान कह रहे हैं कि शरीरस्थोपि कौन्तेय, ये कुंती पुत्र जो आपके शरीर के अंदर स्थित है ना, आप रियल में तो वही हो, और उसकी रियलिटी बताते हैं कि न करोति न लिप्यते, वो तो कुछ भी नहीं करता है। आगे भगवान बोलते हैं, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं, जो वाकई में देख सकते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है वो क्या देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। आत्मा की ये क्वालिटीज हैं कि वो दिव्य है। अब आत्मा दिव्य है और संसार में जो प्रकृति है वो दिव्य नहीं है, वो तो भौतिक है, ठीक है, दोनों ये दोनों एक अलग नहीं है, ठीक, अलग है, मतलब ये दोनों क्वालिटीज किस किस की, अभी हम प्रकृति में और प्रकृति का ये जो शरीर है ना हमें मिला है, जो इतना बड़ा, जिसको हम मैं हूँ कहते रहते हैं, तो उसके उसमें और अपने रियल में जो हम आत्मा है, उन दोनों में कंपेयर करते हैं कि क्या क्या इसमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। आत्मा दिव्य है, शरीर भौतिक है, आत्मा शाश्वत है, शरीर नाशवान है, तथा आत्मा गुणों से अतीत है और शरीर गुणों के अंदर है। अब इन दोनों में कोई मिलाप नहीं है, लेकिन हम क्योंकि इसमें फंसे हुए हैं तो इसके साथ इसको मर्ज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको पहले बताया था कि आधा ग्लास पानी हो उसमें ऑयल डालो, आप उसको पूरी जिंदगी भी शेक करते रहो, और जब स्पून हटा दो ना शेक करने वाला, फिर क्या होगा, तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चले जाएगा। तो इसी तरह आत्मा और शरीर का आपस में कोई मेल नहीं है, इसीलिए जो जान लेता है, अब इसमें कोई मेल ही नहीं है तो उसको अपनी जगह पे जाने दो, ना, इन दोनों को शेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताया कि हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना ही उसके साथ लिप्त होता है, कुछ भी नहीं करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है, यानी कि लगता है जब बच्चा पैदा होता है तब ऐसा लगता है आज नई आत्मा उत्पन्न हुई है। लेकिन हमें तो पहले से बता दिया ना भगवान ने 13.20 में, 20 श्लोक में क्या बताया था, प्रकृतिम पुरुषम शैव विद्यनादि उभावपि, कि आपको तो उसको अनादि जानना है कि कभी उत्पन्न नहीं होता है, ये तो अनादिकाल से है, स्टार्ट नहीं है इसकी कोई भी, अनादि है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद ऐसा लगता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, क्यों लगता है, क्योंकि भौतिक शरीर तो जन्म लेता है ना, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, भगवान ने पहले ही बता दिया विद्यानादि वो तो शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता है और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। भले वो शरीर में रहता है लेकिन वो उत्पन्न नहीं होता है, वो दिव्य है, शाश्वत है, वो कभी पैदा नहीं होता है। और आगे बताते हैं, इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता, और जिस तरह वो कभी पैदा नहीं होता है उस तरह कभी उसका नाश भी नहीं हो सकता है। इसे बताया, नैनाम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनाम दहति पावक, न चैनाम क्लेदयान्ति आपो, न शोषयति मारुत। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, जल उसे गला नहीं सकता, और वायु उसे सुखा नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकता, तो मतलब इस तरह उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। वह स्वभाव से आनंदमय है, ये देखो कितनी अच्छी आत्मा की क्वालिटी है कि वो आनंदमय है, क्योंकि वो सच्चित आनंद घन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, तो वो स्वभाव से आनंदमय है, वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अब देखो हम भौतिक कार्य में प्रवृत्त, ये शरीर होता है ना, क्यों हो रहा है? हम जो भी कार्य कर रहे हैं क्या प्राप्त करने के लिए? आनंद प्राप्त करने के। आत्मा को उसके साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्वभाव से आनंदमय है। शरीर, ये इंद्रियां, ये प्रकृति आनंद को खोजने के लिए पूरी दुनिया में भटक रही हैं, लेकिन आत्मा उसके साथ प्रवृत्त नहीं होता है। भौतिक कार्यों में उसके साथ है ना अटैचमेंट नहीं है उसकी कोई भी। अतः भौतिक शरीर के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उससे लिप्त नहीं होता है, यानी कि जो भी कार्य वो संपन्न कर रहा है भौतिक शरीर। अब हम लोग इसे लोग है, इसे पागल है बोलते हम। एक आंटी है वो बोल रही थी कि मेरी आत्मा पड़ी हुई है इसलिए मैं ना नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकती, मैं अपने आत्मा को कैसे तरसाऊं। वो भले भौतिक शरीर के अंदर उसका है ना संपर्क हो गया, उसके अंदर हो गई, लेकिन उससे उसका कोई आत्मा नहीं तरसती है इस चीजों के लिए। भौतिक चीजों में उसकी कोई रुचि नहीं है, आत्मा को खाली अपने संश जो उनका जो अंशी है ना परमात्मा उसमें इंटरेस्टेड है, और किसी चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं है। वो फंस गई है वो अलग बात है, लेकिन क्या करे उसका लेकिन कोई रुचि नहीं है इन चीजों में। तो यहाँ पर भी श्री प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि भौतिक शरीरों के साथ संपर्क होने से जो कार्य संपन्न हो रहे हैं, जो कार्य जो कर रहा है ना भौतिक शरीर अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा, उसका आत्मा से कोई भी लेना देना नहीं है, वे उससे लिप्त नहीं कर पाते हैं। आगे भी एक छोटा सा श्लोक है, हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी श्रृंखला में आ रहा है, और इस श्लोक को हम जब पढ़ेंगे ना तो हमें और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि शरीर के अंदर रहते हुए भी लिप्त कैसे नहीं होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, देखो एक एक चीज को कितना डिटेल से समझा रहे हैं। हालांकि भगवान को क्या है यार, इतना अच्छा भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं, इतने प्रेम से एक एक चीज को बता रहे हैं कि देखो तुम्हें समझ में नहीं आया ना कि आत्मा शरीर के अंदर होते हुए भी किस तरह शरीर से पृथक होती है, उसके कार्यों से कैसे पृथक हो रही है। तो भगवान बता रहे हैं 13.33, ये कृष्ण है ना बस इतना प्यारा है कि वो हर तरह से जीव आत्मा को बस ये समझाना चाह रहा है। ऐसे लगता है एक एक शब्द में ये बता रहा है कि तुम क्यों फंस रहे हो, निकलो बाहर आओ, मैं तुम्हारा प्रेमी, मेरे पास आओ, तुम्हें संतुष्टि खाली मेरे साथ रहने से मिलेगी, मेरे पास आने से मिलेगी, क्यों भौतिक चीजों में अपने आप को फंसा रहे हो, देखो तुम्हारी असलियत क्या है। यहाँ पर बता रहे कृष्ण कहते हैं अपने इतने मीठे वचनों में बता रहे तुम्हें कि यथा सर्व गतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते। क्या गाते हैं कि यथा सर्व गतम सौक्ष्म्यात्, जिस तरह सर्वगतम का मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह पर होती है, होते हुए भी आकाशम आकाश में नोपलिप्यते, यानी कि लेकिन फिर भी इसका मतलब है क्या है, आगे पढ़ते यथा सर्व कतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्राव स्थितो देहि तथात्मा नोपलिप्यते। अति सुंदर, यथा सर्वगतम यानी जिस प्रकार, सर्वगतम मतलब सर्वव्यापी है, सूक्ष्म्यात् का मतलब होता है सूक्ष्म होने के कारण। क्या सूक्ष्म है आगे बताएंगे, आकाशम आकाश में यानी कि आसमान में न लिप्यते कभी नहीं लिप्त होता है, क्या सर्वत्र यानी सभी, सर्वत्र अवस्थितो, अवस्थितो मतलब स्थित रहता है देह यानी कि शरीर के अंदर, उसी प्रकार आत्मा भी न लिप्यते नहीं लिप्ती, यानी कि जिस तरह देखो आकाश ना सर्वगतम, हर जगह पर आप देखते हो ना आकाश होता है, यथा सर्वगतम सूक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते, वो किसी चीज से लिप्त नहीं होता है, हर जगह है। आप कोई ऐसी जगह पे जाओ जहां पर आकाश ना हो, होता है कभी ऐसी जगह कभी भी नहीं होगी जहां पर आकाश ना, धरती जो है ना अभी देखो भगवान जो है ना आत्मा वो उससे भी ज्यादा अलग है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। मतलब भगवान को तो जाहिर दृष्टांत वही देंगे ना जो हमारी दृष्टिगोचर हो, यानी कि हमने कोई चीज ऐसी देखी होगी उसी के हिसाब से भगवान मिसाल भी देंगे। अब देखो आकाश ना वो कहीं से खंडित नहीं है, हर जगह इज इट इज है, मतलब सारे के सारी जगहों पे होता है। लेकिन धरती कैसे है, कहीं पर है ना नदी है, नाले हैं, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर क्या है, मतलब वो ऐसे प्लेट एकदम एक एक ही प्लेटफॉर्म ने जैसा नहीं है ना। लेकिन आकाश कैसा है, वो हर जगह पर इज इट इज है ना, सीधा सीधा है, उसमें कोई खड्डे उसके अंदर कोई नदी नाले नहीं होते हैं। तो भगवान कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको सही तरह से समझ में नहीं आएगा, तो मैं ये वाली मिसाल देता हूँ। भगवान कहते हैं यद्यपि आकाश सर्वव्यापी हर जगह पर है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, किसी के साथ भी उसका कोई अटैचमेंट नहीं होता है, वो है हर जगह पर लेकिन किसी के साथ लिप्त नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा, जो आत्मा है ना, वो शरीर में रहते हुए भी हमारे शरीर के अंदर है, वो पूरे शरीर में शरीर को पूरा मतलब दे रही है सहयोग, लेकिन उसके साथ शरीर से लिप्त नहीं हो रही है। उसी के कारण भले ये शरीर चल रहा है, लेकिन उस शरीर के साथ उसका कोई अटैचमेंट है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है। अब श्रील प्रभुपाद जी हवा के विषय में बता रहे हैं, भगवान आकाश का बता रहे थे ना। अब देखो, हवा जब चल रही होती है तो जल से गुजरती है, फिर कीचड़ से गुजरती है, फिर कोई गंदगी पड़ी होती है और कोई कोई वस्तु से गुजर रही होती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। ऐसा कभी होता है कि उस वायु पे कोई चीज लग गई हो, हवा आई हो, कहीं से भी गुजर के आई हो, वो तो लेकिन फिर भी वो तो एकदम वायु ही होती है ना, ऐसा उसके साथ मिक्स होकर कोई चीज नहीं होती, यानी कि किसी चीज से वो लिप्त नहीं होती है। उसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकृति विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण अपने उस उनसे पृथक बना रहता है, यानी कि भले वो किसी भी शरीर में स्थित होता है, कौन, आत्मा, फिर भी उसकी प्रकृति इतनी सूक्ष्म है कि वो उस सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक रहता है, उन चीजों से उसका कोई मिलाप नहीं होता। क्योंकि देखो, प्रकृति क्या है, भौतिक शरीर क्या है, जैसे ये हार्डवेयर है ना, स्थूल है, और आत्मा क्या है, सूक्ष्म है, और स्थूल और सूक्ष्म का कभी आपस में मिक्सअप नहीं हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी प्रकृति इतनी सूक्ष्म है और उसके कारण वो हमेशा पृथक रहते हैं, एक दूसरे से अलग रहता है, जीव अलग होता है और प्रकृति का ये जो शरीर है वो अलग रहता है, पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है, और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह इससे कैसे विलग हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो भौतिक की जो साइंसदान है ना, आज के लोग वो इस चीज को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है। अब इतनी सूक्ष्म है, कोई दूरदृष्टि जो यंत्र होते हैं ना, ये जैसे खूर्दबीन और वगैरह, इनसे भी वो देखा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है। असंभव शब्द लिखा हुआ है, मुश्किल नहीं लिखा हुआ है। मुश्किल एक अलग चीज होती है जो कि कोशिश करने के बाद है ना हम लोग कर सके, लेकिन श्री प्रभुपाद जी साफ साफ बोलते हैं कि असंभव है कि जीव किस प्रकार से शरीर से संपर्क में है और इसके विनष्ट होने पर इसे कैसे अलग हो जाएगा, ये आप लोग नहीं समझ सकते हो। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। श्री प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो, विज्ञानों, ये जो साइंसदान है ना आज के, उनके पास कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है कि वो इस चीज को निश्चित कर सके। इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं, केवल गुरु साधु और शास्त्र के जरिए से, केवल हमें शास्त्र बता सकता है कि आत्मा के विषय में, क्योंकि साइंसदान तो बता ही नहीं सकते। इसलिए जो हमें भगवान कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको शास्त्र के अंदर श्रद्धा होगी ना, वही इस आध्यात्मिक टॉपिक को समझ सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।